थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोताओ नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। हम आशा करते हैं कि आप सब भी हमारे साथ आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से आमोस नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है पाप का न्यायोचित दंड। श्रोताओ हमें पूरा विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, किंतु इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
तू आशीष मुझको दे प्रभु, तू आशीष मुझको दे प्रभु, तू आशीष मुझको दे प्रभु, तू आशीष मुझको दे प्रभु। तेरा प्रकाश मुझ में हो प्रभु, तेरा ही तेज मुझ में हो प्रभु, तेरा प्रकाश मुझ में हो प्रभु, तेरा ही तेज मुझ में हो प्रभु। प्यार का तेरा प्यार मुझ में हो, सत्य तू प्रभु तेरी सच्चाई मुझ में हो। तू है मसीह प्यार का तेरा प्यार मुझ में हो, सत्य तू प्रभु तेरी सच्चाई मुझ में हो। यीशु तेरी रूह से मुझे भर दे प्रभु, यीशु तेरी रूह से मुझे भर दे प्रभु, आशीष मुझको दे प्रभु।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने और सुनने के लिए अपने मित्रों के साथ तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आप भी अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से आमोस नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और हम सब देख रहे हैं कि परमेश्वर पाप का दंड अवश्य देता है। तो इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में फिर से दिया है ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आमोस नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, आपके वचनों में से सीखना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के आत्मिक आंखों को, उनके कानों को, हृदय और विचारों को खोल दें, ताकि प्रभु आपका वचन उनके कानों से होकर हृदय तक पहुंचने पाए, उनसे बोलने और बातचीत करने पाए। पिताजी, हमारी विनती है कि आप उनकी सहायता करें। इस घड़ी जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंता और तनाव में हैं, आप उनके साथ भी हो लीजिए, उनकी सहायता कीजिए, ताकि वे भी आपके प्रेम को पहचानने पाएं, जानने पाएं कि आप उनकी चिंता करते हैं, आप उनसे प्रेम करते हैं। प्रभु, आज के वचन पर अपनी आशीष दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम देख रहे हैं कि आमोस यहूदा के रेगिस्तानी क्षेत्र के एक गांव तकवा से आया था, परंतु उसके तार्किक प्रश्न बेजोड़ थे और बुद्धिमानी से भरे प्राकृतिक अनुभव उसके पास थे। उसने पूछा, क्या दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो एक साथ चल सकते हैं? क्या शेर अपने शिकार के बिना गरजता है? क्या शेर के बच्चे बिना भोजन आवाज करते हैं? वह और भी तर्कपूर्ण प्रश्न पूछेगा, क्या चिड़िया बिना फंदा फंसेगी? क्या लोग नरसिंगे की आवाज सुनकर ना डरेंगे? परमेश्वर कहे और कोई भविष्यवाणी ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सारी बातें आमोस की है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हुए इस बातों को देखेंगे। आमोस 3:5 में लिखा है, क्या चिड़िया बिना फंदा लगाए फंसेगी? क्या बिना कुछ फंसे फंदा भूमि पर उचकेगा? मेरे मित्रों, यदि फंदा न लगाया जाए तो चिड़िया पकड़ी नहीं जाएगी। जब मैं छोटा था, तब किसी ने मुझसे कहा कि यदि मैं चिड़िया की पूंछ पर नमक रख दूं तो उसे पकड़ सकता हूं। अतः मैं नमक लेकर पूरे मोहल्ले में चिड़ियों के पीछे भागता रहता था, परंतु चिड़िया कहां रुकती थी कि मैं उसकी पूंछ पर नमक रखूं? मैंने यही सीखा कि फंदा लगाए बिना चिड़िया को पकड़ना संभव नहीं है। कारण और परिणाम प्रकृति का नियम है। यदि आपको चिड़िया पकड़ना है तो फंदा लगाना ही होगा। मेरे मित्रों, वह एक और प्रश्न पूछता है, क्या बिना कुछ फंसे फंदा भूमि पर उचकेगा? यदि मनुष्य ना पकड़े तो वह फंदा क्यों लगाएगा? मैं पतझड़ के समय 6 फंदे लगाता था और निश्चय ही कुछ न कुछ उनमें फंसता था। कभी कभी खरगोश या कोई दूसरा जानवर उसमें आ पड़ता था। यदि मैं कुछ पकड़ नहीं पाता तो फंदा लगाना व्यर्थ था। अतः मुझे फंदा अलग अलग जगहों पर लगाना पड़ता था। कहने का अर्थ यह है कि फंदा लगाने का उद्देश्य है कुछ पकड़ना। यदि आप कुछ नहीं पकड़ना चाहते हैं तो आप व्यर्थ में फंदा नहीं लगाएंगे। इसी बात को आमोस हमें बताता है। आगे वह कहता है 3:6 में, क्या किसी नगर में नरसिंगा फूंकने पर लोग न थरथराएंगे? क्या यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी? ध्यान दीजिए, क्या किसी नगर में नरसिंगा फूंकने पर लोग न थरथराएंगे? परमेश्वर ने दंड की घोषणा कर दी थी और दंड अवश्यंभावी था, अतः प्रतिक्रिया न दिखाना मूर्खता थी। उसका प्रजा के जीवन पर प्रभाव पड़ना आवश्यक था, परंतु वे भविष्यद्वक्ता की बातें नहीं सुनते थे। हम उनसे अलग नहीं हैं, हम भी वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा उस समय के लोग करते थे। यहाँ पर लिखा है वचन में, क्या यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी? मेरे प्रियो, पहले तो हम विपत्ति का अर्थ समझे। विपत्ति का अर्थ पाप या अनाचार नहीं है, इसका अर्थ है आपदा या दंड। आमोस कहता है कि परमेश्वर के भेजे बिना किसी नगर में आपदा नहीं आती है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर की संतान के जीवन में दुर्घटना जैसा कोई शब्द नहीं है। किसी भी परिणाम का कोई कारण अवश्य ही होता है। परमेश्वर इस जगत का संचालन मूर्खता से नहीं करता है। अतः आपदा से हमें सबक सीखना चाहिए। यदि हम अकाल आदि से सबक सीख लें, तो हमें संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं होगी। परंतु हम परमेश्वर की चेतावनियों पर ध्यान नहीं देते हैं। मेरे मित्रों, परमेश्वर किसी भी देश को पाप में शांति एवं समृद्धि प्रदान नहीं करता है। चाहे वहां शांति और समृद्धि दिखाई दे, वे दंड अवश्य पाएंगे। हम यहां पर देखते हैं कि आमोस 7 प्रश्न पूछता है, जिनसे कारण और परिणाम का सिद्धांत प्रकट होता है। परमेश्वर का अवश्यंभावी दंड संयोग नहीं, पाप का परिणाम होता है। मेरे प्रियो, आइए हम पढ़ते हैं आमोस 3 अध्याय उसके 7 पद। लिखा है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद् वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए हुए कुछ भी ना करेगा। आमोस कहता है कि परमेश्वर भविष्यद् वक्ताओं द्वारा पूर्व चेतावनी के दंड नहीं देता है। वह अपनी इच्छा प्रकट करता है, अर्थात पहले से हमें चेतावनी देता है, बता देता है, सचेत करता है, तब वह हमें दंड देता है। आमोस 3 अध्याय के 8 पद में आगे लिखा है, सिंह गर्जा कौन न डरेगा, परमेश्वर यहोवा बोला कौन भविष्यद्वाणी न करेगा। भविष्यद्वक्ता परमेश्वर का वचन इसराइल को सुनाते थे। मेरे मित्रों, हमारे युग की समस्या यह नहीं कि हमारे पास परमेश्वर का वचन नहीं है। समस्या तो यह है कि हम परमेश्वर का वचन सुनते नहीं है। उसके वचन में चेतावनियां हैं। मेरे विचार में बाइबल समाचार पत्र से अधिक उचित जानकारी हमें देती है, क्योंकि संध्याकालीन समाचार आने पर सुबह का समाचार पत्र पुराना हो जाता है। परंतु परमेश्वर का वचन आज, कल और सदा नया ही रहता है। परमेश्वर सदा ही अपनों को भावी दंड की सूचना दे देता है। नूह को परमेश्वर ने 120 वर्ष पूर्व ही आने वाले जल प्रलय की चेतावनी दे दी थी और उस पीढ़ी को संभालने के लिए 120 वर्ष का समय दिया गया। परंतु उस युग के संसार ने ध्यान नहीं दिया। अब्राहम को भी परमेश्वर ने सदोम और अमोरा के सर्वनाश की सूचना पहले ही दे दी थी। उसने अब्राहम को सूचित करके अच्छा ही किया, अन्यथा वह परमेश्वर को गलत समझता। परमेश्वर ने सदैव अपनों को पूर्व सूचना दी है कि क्या होने वाला है। योहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 15 पद में वह अपने शिष्यों से कहता है कि वह उन्हें दास नहीं मित्र कहेगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु उसने उन्हें वह सब बता दिया जो परमेश्वर पिता से उसे प्राप्त हुआ था। धर्मशास्त्र में ऐसे अनेक उदाहरण हैं। यूसुफ को उसने मिस्र पर आने वाले अकाल की पूर्व सूचना दे दी थी। एलिय्याह को भी इसराइल पर पड़ने वाले सूखे के समय की सूचना उसने दी थी। पहला राजा 17 अध्याय के 1 पद में लिखा है, इसराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन के शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। इसके बाद वह 3 वर्ष तक दिखाई नहीं दिया। इसी प्रकार प्रभु यीशु ने जैतून के पर्वत पर अपने शिष्यों से भविष्यवाणी की थी कि यरूशलेम ध्वंस किया जाएगा, मंदिर के पत्थर पर पत्थर नहीं रहेगा। मेरे मित्रों, आमोस यही कह रहा था और उसके युग के लोग उसकी आलोचना करते थे। मनुष्य दंड की बात सुनना नहीं चाहता है। वे शुतुरमुर्ग के समान रेत में अपना मुंह छिपा लेते हैं। कुछ लोग तो रोग के डर से डॉक्टर के पास भी जाना नहीं चाहते हैं। मानव जाति आने वाले दंड की बात सुनना ही नहीं चाहती। यदि बात सच कहें तो वे आपको निराशावादी और आनंद अवरोधक तथा विषादी कहते हैं। परमेश्वर पाप के परिणाम स्वरूप दंड देता है। मेरे प्रियो, यही बात आमोस हमें बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है। परमेश्वर यह भी कहता है कि भविष्यद्वक्ता विवश है कि परमेश्वर का वचन सुनाए। यदि वह परमेश्वर का वचन सुनाने से चूके तो उसे डरना चाहिए। मुझे आज मुक्त विचारकों की चिंता होती है कि वे परमेश्वर का सत्य वचन सुनाने से चूक रहे हैं। सिंह गर्जा, कौन न डरेगा। परमेश्वर ने कहा है। अब हम देखेंगे कि परमेश्वर ने क्या कहा। हम सामाजिक सुसमाचार के भ्रम से बाहर निकले जो नशा है, ज्योति और मधुरता की यात्रा है, गुलाब जल और सूर्य प्रकाश है, वह सदैव अच्छा है और अच्छा ही की कामना करता है। लोग कहते हैं कि इंद्रधनुष के सिरे पर सोने का घड़ा है और वे उसे लेने जाएंगे। आधी शताब्दी तक तो मैंने भी यात्रा की है, परंतु मैं वहां नहीं पहुंचा। सच तो यह है कि परिस्थितियां अधिकाधिक बिगड़ रही हैं। वे वास्तविक समस्या को देखना नहीं चाहते हैं कि मनुष्य के मन में पाप का राज है, और जब तक पाप राज करेगा हम नए नहीं बन सकते। आमोस की पुस्तक 3:9 में हम पढ़ते हैं, अशदोत के भवन और मिस्र देश के राजभवन पर प्रचार करके कहो, सामरिया के पहाड़ों पर इकट्ठे होकर देखो कि उसमें क्या ही बड़ा कोलाहल और उसके बीच क्या ही अंधेर के काम हो रहे हैं। लिखा है, अशदोत के भवन और मिस्र देश के राजभवन पर प्रचार करके कहो। मेरे प्रियो, अशदोत फलिस्तिया में है, परंतु इस समय वह क्षेत्र इसराइल के अधीन है, और वहां उन्होंने बड़े बड़े मकान बनाए हैं, एक बंदरगाह बनाया है और तेल की रिफाइनरी भी वहां पर है। मेरे प्रियो, मेरा एक मित्र भविष्यवाणी का शिक्षक है। वह आज के फलिस्तीन में भविष्यवाणियों की पूर्ति दर्शाने का प्रयास करता है। जब इस रिफाइनरी में तेल पहुंचाया जा रहा था, जब उन्होंने कहा कि अशोर के लिए की गई भविष्यवाणी पूरी हो रही है कि उसका पांव तेल में डूबा रहेगा, परंतु वहां की पाइपलाइन काट दी गई और अब पाइपलाइन लाल सागर के पार अशदोद में जाती है। इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि दान का पांव तेल में है। अब वह उस भविष्यवाणी के पूरा होने का दावा नहीं करते हैं। मेरा अपना विचार यह है कि उस क्षेत्र में कोई भी भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई है, परंतु मैं मंच की तैयारी अवश्य देखता हूं। अतः इन छुटपुट बातों से भविष्यवाणी की पूर्ति दर्शाना मूर्खता है। आमोस के युग में अशदोत फलिस्तिया का एक मुख्य नगर था। परमेश्वर ने अशदोत अर्थात फलिस्तिया और मिस्र के लिए वचन दिया। परमेश्वर ने उन्हें बुलाया है, क्योंकि कहता है, सामरिया के पहाड़ों पर इकट्ठे होकर देखो कि उसमें क्या ही बड़ा कोलाहल और उसके बीच क्या ही अंधेर के काम हो रहे हैं। सामरिया इसराइल के उत्तरी राज्य की राजधानी थी। वहां अहाब और इजेबेल के भवन थे। यद्यपि वह नगर पहाड़ पर बसा था, वह और भी पहाड़ थे। उन पहाड़ों पर खड़े होकर लोग नगर की गतिविधियां देख सकते थे। उनका महान पाप था गरीबों का शोषण एवं उन पर अत्याचार करना। यदि अन्य जाति फलिस्तिया और मिस्र इसराइल का परित्याग करते हैं तो क्या परमेश्वर उन्हें छोड़ देगा? कदापि नहीं। आमोस 3:10 में आगे लिखा है, यहोवा की यह वाणी है, जो लोग अपने भवनों में उपद्रव और डकैती का धन बटोर रखते हैं वे सीधाई से काम करना जानते ही नहीं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सामरिया के धनी चोरी का माल एकत्र कर रहे थे। और तब हम 11 पद में पढ़ेंगे, 3 अध्याय के 11 पद में लिखा है, इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देश का घेरने वाला एक शत्रु होगा और वह तेरा बल तोड़ेगा और तेरे भवन लूटे जाएंगे। मेरे मित्रों, आज सामरिया के महल खंडहर हैं, क्योंकि मेरे मित्र ने मुझे बताया है कि उसने स्वयं देखा है। आमोस 3 अध्याय के 12 पद में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, जिस भांति चरवाहा सिंह के मुंह से दो टांगे या कान का टुकड़ा छुड़ाता है, वैसे ही इसराइली लोग जो सामरिया में बिछौने के एक कोने या रेशमी गद्दी पर बैठा करते हैं वे भी छुड़ाए जाएंगे। सामरिया जब दंड पाएगा तब शेष भाग को भेड़ के कान और टांगों के समान माना गया है, जो शेर के खाने के बाद बच जाते हैं। परमेश्वर का दंड कठोर था क्योंकि उन्हें स्वार्गिक प्रकाशन प्राप्त था, इसलिए उनका उत्तरदायित्व भी उतना ही अधिक था। क्योंकि इसराइलियों को सारी बातें बता दी गई थी, फिर भी उन्होंने परमेश्वर की ओर अपने आप को ना फिराया। आमोस 3 अध्याय उसके 13 और 14 पद में लिखा है, सेनाओं के परमेश्वर प्रभु यहोवा की यह वाणी है, देखो और याकूब के घराने से यह बात चिता कर कहो, जिस समय मैं इसराइल को उसके अपराधों का दंड दूंगा, उसी समय मैं बेतेल की वेदियों को भी दंड दूंगा और वेदी के सिंह टूटकर भूमि पर गिर पड़ेंगे। बेतेल की वेदियां अर्थात सोने के बछड़े के स्थान, वेदी के सिंह टूटकर गिर पड़ेंगे। परमेश्वर कहना चाहता है कि वह वहां के मूर्ति पूजा अर्थात प्रतिमा पूजा के लोगों को चेतावनी देता है कि वह इस कार्य को हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहता है। मेरे प्रियो, हम आगे पढ़ते हैं आमोस 3 अध्याय के 15 पद में, मैं जाड़े के भवन को और धूपकाल के भवन दोनों को गिराऊंगा और हाथी दांत के बने भवन भी नष्ट होंगे और बड़े बड़े घर नष्ट हो जाएंगे, यहोवा की यही वाणी है। लिखा है, हाथी दांत के बने भवन भी नष्ट होंगे। यह भवन आहाब और इजेबेल ने पहाड़ पर बनवाया था। मेरे एक मित्र ने मुझे बताया है कि उसने इस भव्य महल को देखा है, यह पर्वत की चोटी पर बना था, वहां से वे चारों दिशा में देख सकते थे। यदि दिन साफ हो तो वे वहां से पश्चिम में भूमध्य सागर देख सकते थे और पूर्व में यर्दन की घाटी को, उत्तर में एसडलोन की घाटी जहां पूर हर्मन पर्वत था, और दक्षिण में यरूशलेम दिखता था। यह कैसा सुंदर दृश्य है मेरे मित्रों। वह राजभवन हाथी दांत का था। शत्रु उस सुंदर हाथी दांत को तो ले गए, परंतु आज वहां खुदाई की जा रही है। वहां यात्रा करते किसी व्यक्ति ने कहा कि हमारे गाइड ने हमें बताया कि खुदाई में हाथी दांत की अनुपम वस्तुएं मिली हैं। उनमें एक इस दान भी था, कुछ पात्र शराब रखने के लिए भी थे। ऐसा प्रतीत होता है कि उस युग के सर्वोत्तम सज्जाकार ने उस महल को रूप दिया था। वह विलासिता का महल था। परमेश्वर ने कहा कि वह उसको नष्ट कर देगा। मैं आज के युग का सबसे अधिक निर्जन स्थान सामरिया से हटकर दूसरा कहीं नहीं देखता हूं। परमेश्वर ने यह भविष्यवाणी पूरी की है। यद्यपि वर्तमान में वहां भविष्यवाणियां पूरी नहीं हो रही हैं, पूर्व काल में भविष्यवाणियां पूरी हुई हैं, परंतु आज वहां मंच तैयार हो रहा है कि आने वाले समय में भविष्यवाणियां पूरी हों। मेरे प्रिय श्रोता मित्रों, परमेश्वर अपने दासों पर प्रकट किए बिना कुछ भी नहीं करता है। उसने नूह पर प्रकट किया कि जल प्रलय आएगा, और जल प्रलय आया। उसने अब्राहम पर प्रकट किया कि वह सदोम और अमोरा नगर को नष्ट करेगा और उसने किया। उसने यूसुफ पर प्रकट किया कि वहां अकाल पड़ेगा और वहां अकाल पड़ा। परमेश्वर ने इसराइल को चिताया कि एक शत्रु उनका बल तोड़ेगा और उनके भवन को लूटेगा, तो अश्शूर ने उन्हें नष्ट किया और लूटकर उन्हें बंदी बनाकर ले गए। जब वह इसराइल को दंड देगा तब उनकी वेदियां भी ढा दी जाएंगी, उनके राजभवन और सब भव्य इमारतें ढा दी जाएंगी, राजा का हाथी दांत का भवन ढा दिया जाएगा। परमेश्वर ने जैसा कहा था वैसा ही किया। आज वहां खंडहर इस बात की गवाही देते हैं। मेरे प्रियो, उन्होंने सोचा कि आमोस एक गंवार व्यर्थ की बातें करने वाला व्यक्ति है, परंतु परमेश्वर ने कहा और वह विवश होकर भविष्यवाणी करने लगा। क्या किसी नगर में नरसिंगा फूंकने पर लोग न थरथराएंगे? क्या यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी? इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। सिंह गर्जा, कौन न डरेगा? परमेश्वर यहोवा बोला, कौन भविष्यवाणी न करेगा? मेरे प्रियो, आज चुनाव आपका है कि परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है और आप उसकी नहीं सुन रहे हैं। परमेश्वर के दास उसके वचन को लेकर के आपके पास आ रहे हैं, परंतु आप नहीं सुन रहे हैं। निश्चय जाने कि परमेश्वर अपनी बातों को अपने दासों के द्वारा, वचन के द्वारा हम तक पहुंचाता है, ताकि हम अपने मनों को फिराएं, उसके वचन को स्वीकार करें और उस दंड से बच जाएं, क्योंकि परमेश्वर की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं होता है। मेरे प्रियो, क्या आप मेरी बातों को सुन रहे हैं? यदि हां, तो आज अपने जीवन को प्रभु के निकटता में लाएं और उससे प्रेम करें, उसकी बातों को माने, ताकि आपका जीवन आशीषमय जीवन बन जाए। आज यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबके साथ हो और आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
पवित्र तू प्रभु, तेरी पवित्रता मुझ में हो, शुद्ध तू प्रभु, तेरी शुद्धता मुझ में हो, पवित्र तू प्रभु, तेरी पवित्रता मुझ में हो। शुद्धता मुझ में हो, तेरा ही रूप सदा हो मुझ में प्रभु।